जमानों की उमंग बाब नंबर 6। हमने उसका सितारा देखा है। जब येसु हेरोदेस के जमाना में यहूदिया के बैतुलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। मत्ती 1:2-2। मशरिक से आने वाले ये मजूसी इल्मो हिकमत के शायक इंसान थे। ये बा असर तबका से ताल्लुक रखते थे। उनकी पैदाइश शरीफ और नजीब खानदानों में हुई थी। ये अमीर पढ़े लिखे और ऐसे लोग थे जो दूसरे लोगों के एतकाद को फौरन तस्लीम कर लेते थे। उनमें बाज ऐसे थे जिन्होंने फुर्सत के औकात में खुदा के बारे भी मुतालिया कर रखा था। वो अपनी ईमानदारी और हिकमत के बायस अपने लोगों में काबिल एहतराम थे। बुत परस्ती के अंधेरों में खुदावन हमेशा अपना नूर चमकाता है। इन मजूसियों ने जब सितारों भरे आसमान का मुतालिया किया और उस भेद को समझने की चाहत की जवान सितारों में मख्फी थी, तो उन्होंने उनमें किदावन का जलाल देखा। मजीद खालिक खुदावन के बारे जानने के लिए उन्होंने इब्रानी नुस्खाजात की तरफ रुजू किया। उनकी अपनी सरजमीन में आने वाले मसीह के बारे पेशनगोइयों के जखायर मौजूद थे। बिलआम भी मजूसियों के खुदानदान में से था। गो एक वक्त वो खुदा का नबी बना। उसने रूहुल कुदस की हिदायत से बनी इसराइल के बढ़ने भूलने और अलमसीह की आमद की पेशनगोई की थी, और उसकी पेशनगोइयां सदियों से एक नस्ल ता दूसरी नस्ल बतौर रिवायात पहुंचाई जाती थीं। अहद अतीक में मसीह खुदावन की आमद के बारे ज्यादा सफाई से मरकूम था। मजूसी ये जानकर बहुत खुश हुए कि उसकी आमद बहुत करीब है। वो इसलिए भी बहुत खुश थे कि तमाम दुनिया खुदा के जलाल के इल्म से मामूर हो जाएगी। जब खुदावन के जलाल ने बैतुलहम की पहाड़ियों को बुकाए नूर बना दिया, उस रात मजूसियों ने आसमान में अजीब रोशनी देखी, और जब वो रोशनी मध्यम पड़ी तो एक बड़ा रोशन सितारा आसमान में नमूदार हो गया। ये सितारा एक जगह खलाना था बल्कि हरकत कर रहा था, जो मजूसियों की दिलचस्पी का ज्यादा सबब बना। ये सितारा फरिश्तों से कुछ फासले पर था, जो मजूसियों की दिलचस्पी का ज्यादा सबब बना। ये सितारा फरिश्तों से कुछ फासले पर था जिसके बारे मजूसी नावाकिफ थे। ताहम उस खास सितारे से वो बड़े मुतासिर हुए, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा अहम था। इसके बारे उन्होंने फैलसफियों और काहिनों से दरियाफ्त किया, नीज कदीम तुमारों से इस अहम सितारे के बारे मालूमात हासिल की। बिलाम की पेशनगोई से पता चलता था याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असा उठेगा। गिनती 17:24। वो सोचने लगे, क्या ये मुमकिन है कि यही सितारा उस मौदा मसीह की तकमील के लिए भेजा गया है? बस उन मजूसियों ने अपस नूर को जो आसमान से सादिर हुआ था उसे खुशामदेद कहा। अब इस सितारे की रोशन और ताबा शुआएं उन पर पड़ने लगीं। नीज ख्वाबों में उन्हें हिदायत की गई कि वो नोजायदा शहजादे की तलाश में निकल पड़े, जैसे बुजुर्ग अब्राहम ईमान से खुदा कहने पर चल पड़ा, मगर ये नहीं जानता था कि खुदा उसे कहां ले जाना चाहता है। जैसे ईमान से जब बुजुर्ग अब्राहम बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं तो भी रवाना हो गया। इब्रानियों 8:11। इसी तरह बनी इसराइल ने मौदा सरे जमीन पर कब्जा करने के लिए ईमान से ही बादल के सित्तों की पैरवी की। बैना मजूसी ईमान से निजात दहिंदा को ढूंढने निकल पड़े और नजर करने के लिए अपने साथ तहाइफ भी ले लिए, और ये मशरकी दस्तूर भी था कि शहजादों या आले मर्तबा के लोगों को नजराने पेश किए जाएं। सितारे की रहनुमाई हासिल करने और उसे अपनी नजरों के सामने रखने के लिए लाजिम था कि मजूसी रात को सफर करते। बेशक ये सितारा बैरूनी तौर पर उनके एतकाद को तकवियत देता था, मगर उनके बातिन में रूहुल कुदस उन्हें ईमान की मजबूती अता फरमा रहा था। इससे उनकी कायलियत और उम्मीद मजीद पुख्ता हो गई। बेशक ये लंबा सफर था, मगर ये उनके ये पर मुसर्रत सफर बन गया। अब वो बनी इसराइल की सरे जमीन में पहुंच गए। उनकी नजरों के सामने यरूशलम था। वो सितारा जो सारी मसाफत के दौरान उनकी रहनुमाई करता रहा था, वो हैकल के ऊपर आकर ठहर गया और थोड़ी देर के लिए उनकी आंखों से ओझल हो गया। जल्दी जल्दी वो आगे बढ़े ताकि मसीह मौत को देखें, मगर शहर में दाखिल होते ही उनकी हैरानी की कोई हद न रही, क्योंकि वहां एक शख्स भी नहीं था जिसे मौदा मसीह की पैदाइश का इल्म हो। और जब उन्होंने पूछा तो किसी ने भी खुशी का इजहार न किया, बल्कि वो हैरान और खौफजदा हो गए और उनकी तजहीक की। काहिन रिवायात को दोहरा रहे में हैं, वो अपने मजहब और अपनी राजबाजी के पुल बांध रहे हैं और रोमियों और यूनानियों को बुत परस्तों के बराबर समझ रहे हैं। काहनों के नजदीक ये सबसे ज्यादा गुनाहगार हैं। मजूसी बुत परस्त नहीं है और उनकी इज्जत खुदा की नजर में काहनों कहीं ज्यादा थी, क्योंकि मजूसी तो खुदा के परस्तार थे, मगर यहूदी उनको हिकारत की नजर से देखते थे। हत्ता के जो शरीयत के मुहाफिज थे उनको भी मजूसियों के सवालात करने से कोई इश्तियाक और हमदर्दी पैदा ना हुई। मगर मजूसियों के आने की खबर जंगल की आग की तरह यरूशलेम में फैल गई, बल्कि बैतुलहम के सारे शहर में अजीब कैफियत पैदा हो गई, और होते होते ये खबर हेरोदीस बादशाह के महल तक पहुंची। हेरोदीस अपने हरीफ बादशाह के नाम से तिलमिला उठा। उस तख्त तक पहुंचने के लिए उसने कई कत्ल किए थे। चूंकि वो खुद बदेशी था, इसीलिए उसकी रियाया उसे सख्त नफरत की निगाह से देखती थी। सिर्फ रोम की उसे पुष्टपनाही हासिल थी, मगर उस नए शहजादे के बारे अजीब बात यह थी कि उसी की अपनी सल्तनत में यह शहजादा पैदा हुआ था। हेरोदीस को शक गुजरा कि शायद काहन अजनबियों से मिलकर उसे तख्त से महरूम करना चाहते हैं। बस उसने अपना शक मख्फी रखा और चाहा कि कोई बड़ी मक्कारी की चाल चलकर
के मंसूबे को बिल्कुल नाकाम बना दे। बस उसने सरदार काहन और शरा के मौलिमों से पूछा कि शरीयत के मुताबिक अलमसी की पैदाइश कहां होनी चाहिए। बादशाह के सवाल और मजूसियों की दरख्वास्त से यहूदियों के हुरूर को सख्त धचका लगा। वो हरगिर बताना ना चाहते थे, मगर चूंकि शाही हुक्म था इसलिए उन्होंने बड़ी एहतियात और जान फिशानी से शरीयत की वर्ग गर्दानी की। बस शरीयत की रोशनी में उन्होंने कहा, यहूदिया के बैतुल हम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है, ए बैतुल हम, यहूदा के इलाके, अगरचे तू यहूदा के हाकिमों में सबसे छोटा है तो भी तुझमें से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। इसके बाद हेरोदेस ने खुफिया तौर से मजूसियों को बुलाया। उसके दिल में जो गम, गुस्सा और नफरत की आग भड़क रही थी उसे जाहिर न होने दिया। मजूसियों से बड़ी शायस्तगी से पेश आकर पूछा कि आपको वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। नीज उनको यकीन दिलाया कि मुझे उसकी पैदाइश के बारे सुनकर बड़ी खुशी हुई है। बस ये कहकर उन्हें बैतुल हम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। ये कहकर हेरोदेस ने उन्हें बैतुल हम की तरफ रवाना कर दिया। यरूशलम के काहन और बुजुर्ग मसीह यीशु की पैदाइश के बारे इतने नावाकिफ नहीं थे जिस कदर वो मक्कारी कर रहे थे, क्योंकि जो कुछ फरिश्तों ने चरवाहों से कहा था वो सब कुछ चरवाहों ने यरूशलम में आकर बता दिया था, मगर रबियों ने इस पैगाम की कुछ परवाह ना की। अगर रबी चाहते हो जरूर मसीह को पा लेते और मजूसियों की रहनुमाई करते। इसके बरक्स मजूसी उनके पास आए ताकि उनको मसीह की पैदाइश के बारे खबर दें और पूछें, यहूदियों का बादशाह कहां है जो पैदा हुआ है, क्योंकि मशरिक में हम उसका सितारा देखकर आए हैं ताकि उसे सजदा करें। हसद और गुरूर ने नूर के रास्ते मजदूत कर दिए। अगर वो चरवाहों और नजूमियों की खबर को सच मान लेते तो इससे साबित होता कि उनके पास खुदा की सच्चाई है और वो हासिद न समझे जाते। लेकिन शरा के ये मौलिम उनकी बात मानना ना चाहते थे। उनका गुमान था कि ये हो ही नहीं सकता कि खुदा हमें छोड़कर नहंजार चरवाहों या नामहनतून गैर कौम वालों से बातचीत करे। वो बदस्तूर उस खबर की एहानत करने में मशहूल थे जो मजूसी और चरवाहे शहर यरूशलम और हेरोदेस बादशाह के लिए लाए। वो इस खबर की सेहत की तस्दीक करने के लिए बैतुल हम तक भी न गए, बल्कि उन्होंने उस खबर की मुखालिफत करके मसीह को रद्द कर दिया। यहीं से उनकी हट धर्मी और नफरत निजात दहिंदा के खिलाफ बढ़ी। जब खुदावंद गैर कौम वालों के लिए दरवाजे खोल रहा था उसी वक्त यहूदी लीडर अपने ऊपर दरवाजे बंद कर रहे थे। मजूसी यरूशलेम से तन्हा रुखसत हुए। रात के साए लंबे हो रहे थे जब वो यरूशलेम के फाटकों से बाहर आए, मगर सितारे को दोबारा देखकर उनकी खुशी की इंतहा न रही। सितारे ने बैतुलहम की तरफ उनकी रहनुमाई की। चरवाहों की तरह मजूसियों की मसीह के बारे कोई निशानी न बताई गई। इतने लंबे सफर और यहूदियों की बेएतनाई के सबब वो सख्त मायूस हुए। जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए उस वक्त उनमें काफी एतमाद और भरोसा था, लेकिन जब वो यरूशलेम से चले तो उनके एतमाद में खासी कमी वाक़े हो चुकी थी। बैतुलहम में उन्होंने कोई ऐसा शाही पहरा ना देखा जो नौजायदा बादशाह के लिए तायुनात किया गया हो, ना वहां कोई बड़े मुअज्ज़ज़ लोग थे। येसु मसीह चरनी में पड़ा था। उसके वालदैन जो गैर तालीम याफ्ता थे सिर्फ वही उसके सरबड़ा थे। वो सोचने लगे, क्या ये वही है जिसके बारे लिखा है कि वो याकूब के कबाइल को बर्पा करेगा और महफूज इसराइलों को वापस लाएगा? वो कौमों के लिए नूर होगा और उसके सबब से जमीन के किनारों तक नजात होगी। और जब वो गुहर में पहुंचे तो उन्होंने बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लबान और मर उसको नजर किया। उन्होंने अलीम से बच्चे में अलूहियत देखी और उसे निजात दहिंदा कबूल किया। उनका कितना बड़ा ईमान था। इन मजूसियों के हक में ये कहना गलत ना होगा जो एक मौके पर खुदावंद येसु मसीह ने एक रूमी सरदार के लिए कहा था कि इतना ईमान मैंने इसराइल में भी नहीं देखा। मजूसी हेरोदेस के इरादे जो वो मसीह के मुतल्लिक रखता था ना ताड़ सके। जब उनका मकसद पूरा हो गया और वो वापस यरूशलेम जाना चाहते थे ताकि हेरोदेस को अपनी कामयाबी के बारे मुत्तले करे, तो उन्हें ख्वाब में खुदावन ने हिदायत की कि हेरोदेस से कोई ताल्लुक ना रखना और ना उसे कोई खबर देना। लिहाजा वो यरूशलेम की तरफ ना गए बल्कि अपने वतन जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया। इसी तरह मुकद्दस यूसुफ को खुदा ने नौर बच्चे को लेकर कर कहा कि मरियम और रहना जब तक मैं तुझे ना बताऊं, क्योंकि हेरोदेस बच्चे की जान का खाहां है। बस मुकद्दस यूसुफ ने देर किए बगैर खुदावन का हुक्म माना और मिस्र की तरफ चल पड़ा। मजूसियों के जरिए से खुदावन ने अपने बेटे की पैदाइश की खबर यहूदियों तक पहुंचाई, बल्कि इस खबर से हेरोदेस और अवाम में हलचल मच गई। हेरोदेस ने शरा के मौल्लिमों और काहिनों को मजबूर किया कि येसु की पैदाइश की पेशिनगोई के बारे ठीक ठीक मालूम करके उसे खबर दे। इबलीस इस बात पर तुला हुआ था ताकि दुनिया में नूर ना पहुंचे, इसीलिए उसने अपना हर हरबा इस्तेमाल किया कि नजात दहिंदा को सफाए हस्ती से मिटा दे। मगर वो जो न सोता है न ऊन उखता है, वो अपने बेटे की निगरानी कर रहा था। वो जिसने बनी इसराइल के लिए आसमान से मन बरसाया, वो जिसने कहत के जमाना में एलिया की खुरश का इंतजाम किया, उसी ने बुतपरस्त कौम की सरजमीन में मुकद्दसा मरियम और बच्चे की हिफाजत की। और मजूसियों ने जो कीमती तहाइफ दिए थे वो गैर सर जमीन में उनकी तमाम जिस्मानी जरूरतों यानी खुरश और पोशिश के लिए काफी थे। मजूसियों ने सबसे पहले मसीह
खुदावंद को खुश आमदीद कहा, और मजूसियों ने ही उसे सबसे पहले नजराने पेश किए, और ये उनकी बहुत बड़ी खिदमत थी। वो नजराना जो दिल से पेश किया जाता है खुदावंद उसे खुशी से कबूल करता है। हमने अपने दिल खुदावंद को दिए हैं, हम भी सोने चांदी की तरह जो कीमती असासा हमारे पास है खुदावन के पास लाएं। हमारी जहनी रूहानी काबिलियतें उसके लिए वक्फ होनी चाहिए जो हमें मोहब्बत करता है और जिसने खुद को हमारे लिए दे दिया। हेरोदीस यरूशलेम में बड़ी बेसब्री से मजूसियों का इंतजार कर रहा था। जब काफी अरसा गुजर गया और वो वापस ना आए तो उसे शक गुजरा कि शायद रब्बी उसके इरादे को ताड़ गए थे, इसलिए वो उसे मसीह की जाए पैदाइश बताने पर रजामंद ना हुए। और इसी तरह मजूसी भी जो जानबूझकर उसके पास वापस नहीं आए, वो उस ख्याल को सोचकर गुस्से से पागल हुआ जाता था। बेशक उसकी चाल नाकाम हो चुकी थी, मगर उसने चारा जुई करना तर्क ना किया। उसने कहा कि मैं उस बच्चे का वो हशर करूंगा कि दुनिया और यहूदी कभी भला ना सकेंगे। बस फौरन सिपाहियों को बैतुलहम रवाना कर दिया गया और उन्हें हुक्म दिया कि 2-2 साल या उससे कम उम्र बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाए। हुक्म की तामील की गई और दाऊद का पुरअम शहर उस हौलनाक मंजर का गवाह है। मगर 600 साल पहले ही खुदा ने बनी को यह बता दिया गया था कि ऐसा होगा। रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम। राखिल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। यहूदियों पर यह हौलनाक मुसीबत उनकी अपनी वजह से आई। अगर वो हलीमी और वफादारी से खुदावन के हुजूर चलते रहते तो खुदावन हेरोदीस बादशाह के कहर को दूर करने पर कादिर होता, मगर अपने गुनाहों की वजह से उन्होंने खुद से अलग कर लिया था और रूहुल कुदुस को, जो उनकी ढाल थी, उन्होंने उसे रद्द कर दिया था। उन्होंने खुदा की मर्जी मालूम करने के लिए खुदाए पाक नुस्खों का मुताला न किया था। उन्होंने सिर्फ उन पेशनगोइयों का मुताला किया जो उनकी सरफराजी का बायस थीं या दूसरी कौमों को रद्द करने के बारे थीं। वो बड़े फख्र गुरूर से कहते थे कि मसीह मौऊद एक बादशाह की चैसियत से आएगा, अपने दुश्मनों को मगलूब करेगा और अपने कहर में गैर अकवाम और बुत परस्तों को मिलिया मीट करेगा। इसलिए उन्होंने अपने हाकिमों के कहर को भड़काया था। मसीह की खिदमत की गलत रंग में पेश करने की वजह से यहूदियों के सर इतनी बड़ी मुसीबत आई। ये हेरोदीस के मजालिम में से एक आखिरी अमल था जिससे उसकी हुकूमत तारीख हो गई। मासूम बच्चों को कत्ल करने के बाद वो भी एक निहायत ही हैबतनाक बीमारी से मर गया। मुकद्दस यूसुफ, जो अभी तक मिस्र में था, उसे खुदा के फरिश्ता ने कहा कि अब तो इसराइल की सरजमी को लूट जा। येसु को दाऊद के तख्त का वारिस ख्याल करते हुए मुकद्दस यूसुफ ने चाहा कि अपना घर बैतुलहम में बनाए, मगर ये जानकर कि अरखलावुस अपने बाप हेरोदीस की जगह यहूद में बादशाह करता है, वहां जाने से डरा और ख्वाब में हदीयत पाकर गलील के इलाका को रवाना हो गया। हेरोदेस के तमाम लड़कों में से अरखलावुस की बहुत ज्यादा खसलतें अपने बाप से मिलती जुलती थीं। बस मुकद्दस यूसुफ खुदा से हदायत पाकर अपने पहले घर नासरत को चला गया, जहां तकरीबन 30 साल तक मसीह नासरत में रहा, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। गलील हेरोदेस के बेटे की जेरे हुक्मरानी में आता था, मगर यहूदिया की निस्बत उसमें काफी बदेशी लोग थे। जब नजात दहिंदा इस दुनिया में आया तो यही उसकी खातिर मदारत हुई। ऐसे मालूम देता था कि बच्चे यसु के लिए आराम या पनाह की कोई जगह नहीं। ताहम शुरू से ही खुदावन ने उसकी निगरानी के लिए फरिश्तों को हुक्म दे रखा था, ताकि उसे किसी तरह का जख्म न पहुंचे।